जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jai Radha Gokula Nandana, Radha Gokula Nandana. परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतहिस्तुवान ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरोदीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्य भगवान् व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा से कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानु सुते देवी प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वृंदावन में गोपियां आपस में विचार विमर्श कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं, एक दूसरे को श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में बतला रहे हैं, साथ साथ उनके सौंदर्य के कारण, उनके बांसुरी के बजाने के कारण अन्यों पे, पुरुष वर्ग जो है उन पे क्या असर पड़ता है, इसका भी वो वर्णन कर रही हैं। कल हम देख रहे थे कि श्री कृष्ण के बांसुरी वदन के कारण नदियों का जल प्रवाहित होना बंद हो जाता है, रुक जाता है जल, और नदी के लहरें मानो की भुजाएं बनकर मुरारी श्री कृष्ण के चरण कमलों का आलिंगन करना चाहती हैं, और साथ साथ जब श्री कृष्ण वन के अंदर प्रवेश करते हैं बांसुरी बजाते बजाते, उनके ऐश्वर्यों का प्रदर्शन होता है और ऐसे प्रतीत होता है कि मानो साक्षात आदि पुरुष स्वयं भगवान वहां विचरण कर रहे हों, ऐसा ग्वाल बाल देखते हैं। जब बांसुरी बजती है श्री कृष्ण की तो गाय हृदय से भगवान श्री कृष्ण को अंदर लेते हैं अपने अंतःकरण में, श्री कृष्ण के पास आते हैं, श्री कृष्ण को बुलाते हैं। जब वो की गाय इधर उधर चरने चली जाती हैं जलपान करने हेतु उनको बुला लेते हैं, वहाँ के जो पेड़ हैं, गुल्म लताएं हैं, उन तरह तरह के फूल और फल इत्यादि प्रकट हो जाते हैं, इनके भार के कारण ये पेड़ झुकने लगते हैं मानो कि वो श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं, या मानो कि उनके शरीर के अंदर अष्ट सात्विक प्रेम के विकार प्रकट हो रहे हों। उधर जो वनमाला श्री कृष्ण ने धारण की हुई है उसमें जो तुलसी का फूल है, सो उन तुलसी के फूलों का सुगंध सूंघने के लिए भंवरे गुनगुनाते हैं और उन्मत्त जैसे हो जाते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, जैसा कि हम कल कह रहे थे, कि ये भंवरे तुलसी की माला या तुलसी के फूलों के प्रति इसलिए आकर्षित होते हैं कि इतने सुगंधित हैं। ये सुगंध तो साधारण व्यक्ति को सूंघने में नहीं हो पाता, परंतु ये भंवरे जो कि भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं वो सूंघ पाते हैं। ये पेड़ पौधे जो हैं ये गृहस्थ भक्तों के समान हैं, जो कि जब हरिनाम करते हुए भक्तों का दर्शन करते हैं तो तुरंत सामने आके झुकते हैं और सम्मान करते हैं भक्तों का। दूसरी ओर सरोवरों में तैरने वाले हंस आदि जो पंछी हैं वो वन में स्थित मुनियों के समान हैं। जब वो श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनते हैं, श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, तो बस अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण के सुंदर रूप को बिठा देते हैं और उस बांसुरी वदन या बांसुरी के ध्वनि के ऊपर उनका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करते हैं। जिस तरह के वन में स्थित एक योगी अपने ध्यान में स्थित होकर सदैव हृदय में विराजमान भगवान श्री हरि का चिंतन मनन करता है, तो ऐसे गोपियां वर्णन कर रही हैं इस युगल गीत में, दशम स्कंद के 35वें अध्याय में। और अब हम आते हैं 35वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में। इन दो श्लोकों में, इस जोड़ी में, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का, उनके वेशभूषा का और उनके वेणु वदन का वर्णन है। साथ साथ अब गोपियां वृंदावन से ऊपर बादलों तक अपनी चर्चा को ले जाती हैं और ये बताना चाहती हैं कि श्री कृष्ण को देख के बादल क्या करते हैं। तो सबसे पहले गोपियां श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हैं। प्रसंग क्या है? प्रसंग है, सह बलह स्रक अवतांस विलासह सानुषु क्षितिभृतो व्रज देव्यः। सह बलह, बलराम के साथ में श्री कृष्ण चल रहे होते हैं और पहाड़ों के अर्थात गोवर्धन के पास ऊपर चलते चलते वो विलास कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और देखने में कैसे हैं? स्रग अवतामस, स्रग मतलब एक माला, अवतामस मतलब आपीड़, अपने सर पे एक आभूषण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने इसे स्वीकार कर लिया है। और जैसे इस तरह बलराम जी के साथ में वो चलते रहते हैं, वैसे वैसे हर्षयंजर ही सभी को हर्षित करते हैं। वेणु रवेण जात हर्ष उपरंभति विश्वम, और सारे प्राणियों को हर्षित करते हैं और उनकी वेणु की ध्वनि गूंजती है सब जगह, सब जगह फैल जाती है, उसकी प्रतिध्वनि भी आती है। तो ये दृश्य है जो गोपियां देख रही हैं। तो श्री कृष्ण के वेशभूषा की चर्चा संक्षिप्त में हम कल भी कर चुके थे, परसों भी कर चुके थे। इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। देखिए यहाँ कितने सारे पत्रिकाएं हैं और आजकल के समाज पत्रों में भी, टेलीविजन आदि में भी चर्चा होती है। आजकल कौन कैसे कपड़े पहन रहे हैं, किसने अपने बालों को कैसे बनाया है। आजकल तरह तरह के बाल ऐसे बनाते हैं कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि लोग सोचते हैं कि वो सुंदर दिख रहे हैं ऐसे करके। विदेशों में खास करके हम देखें, अभी भारत में भी आ रहा है, ऐसे पट्टी पट्टी में बाल काटते हैं, पट्टी पट्टी रखते हैं, केवल थोड़ा बाल यहाँ, थोड़ा फिर मुंडन किया हुआ, थोड़ा बाल रखा, थोड़ा मुंडन किया, फिर थोड़े जानबूझ के नाई के पास जाते हैं और अपने बालों को ऐसे ऊपर कर देते हैं जैसे मानो उनका सर करेले के समान हो, बाल ऊपर ऐसे, हर एक बाल को ऐसे ऐसे उसको करके ऊपर करते हैं तीर की तरह। कई लोग शिखा रखते हैं। एक बार हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा, हमने कहा दूसरे भक्त, देखो भक्त है कोई, भक्त नहीं, ये कोई दूसरा व्यक्ति है, बस फैशन है। और लोग बालों को लाल, पीला, नीला, रंग बिरंगी करते हैं बालों को। और ऐसा नहीं कि केवल तरुण तरुणियां ऐसे करते हैं, कई बार हमने देखा है 50-55 वर्ष के लोग भी ऐसे करके घूमते हैं, तरह तरह की चीजें। वेशभूषा भी कैसी, अब क्या बताएं आपको, नहीं बताना ही अच्छा है, खास करके मंदिर में। निर्वेश कहना ठीक है, अवेश नहीं। तो खैर, ऐसे और पत्रिकाओं में भी हम देखते हैं सिनेमा के अभिनेता क्या पहन रहे हैं, इतने सारे फैशन के प्रदर्शन आदि होते हैं, कितने लोग जाते हैं इनमें, केवल पोशाक वेशभूषा इसके ऊपर। तो ये दुनिया में जो भी चल रहा है वो आध्यात्मिक जगत का एक विकृत प्रतिबिंब है, जैसे कि हम प्रतिदिन कहते आए हैं। तो श्री कृष्ण भी वेशभूषा या तरह तरह के वेश पहनना पसंद करते हैं, इसलिए तो हम लोग यहाँ दुनिया में इतना जोर देते हैं इन चीजों के ऊपर। श्री कृष्ण तो पसंद करते अपने आप को सजाने में, यहाँ तक कि जब वो कोई असुर का वध करने भी जा रहे हैं तो अपने आप को ठीक ठाक करके जाएंगे मैदान में जब जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण के आभूषण वेशभूषा आदि के बारे में काफी जानकारी शास्त्र में दी हुई है। रूप गोस्वामी पद भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के तीन प्रकार के वस्त्र होते हैं। एक को कहते हैं युग, दूसरा है चतुष्क और तीसरा है भूयिष्ठ। युग मतलब केवल दो वस्त्र होते हैं, एक उत्तरीया और दूसरा धोती। कभी कभी प्रसंग के अनुसार श्री कृष्ण चतुष्क अर्थात चार वस्त्रों वाले वेश को भी धारण करते हैं। कुर्ता पहनते हैं, धोती, साथ साथ पगड़ी और एक दुपट्टा भी होता है। और भूयिष्क, भूयिष्क में वो विविध प्रकार के रंगों के वस्त्र पहनते हैं। और ये कब तब पहनते हैं, जब कोई नंद बाबा जैसे उनको बुलाते हैं, शाम के समय कोई मनोरंजन का कार्यक्रम होता है, कोई मंच पे कुछ संगीत का कार्यक्रम हो रहा होता है, या ऐसे कोई उत्सव होता है, तो श्री कृष्ण ऐसे भूयिष्क ऐसे वस्त्रों में जाते हैं, रंग बिरंगे कपड़ों में जाते हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रसंगों में श्री कृष्ण ऐसे वस्त्र पहनते हैं। और जहाँ तक सजावट की बात आती है तो थोड़ा बहुत हम चर्चा कर भी चुके हैं कि जब वो वन में जाते हैं तो जमीन पे पड़े हुए धातुओं को भी ले लेते हैं और अंगराग के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। कभी फूलों को लेकर अपने कान के पीछे रख देते हैं, कभी बालों में लगा देते हैं। तो ऐसे बताया गया है शास्त्रों में कि श्री कृष्ण के जो सजावट हैं या आकल्प हैं वो भी सात प्रकार के हैं। एक है केश बंधन, किस तरह से अपने केशों को बांधते हैं, तो आजकल भी लोग कर ही रहे हैं ना, तो सब विकार है। तो श्री कृष्ण भी चार तरह से अपने बालों को बांधते हैं। पहला है जूड़ा, मतलब जैसे पीछे की ओर ऐसे बांध देते हैं बाल को। दूसरा कभी कभी फूलों से अपने बाल को बांध देते हैं, कभी कभी चूड़ा के रूप में, चूड़े के रूप में, जैसे योगी जन वगैरह पहनते हैं वैसे चूड़े के रूप में होता है। और कभी कभी उनके बाल जो हैं गुथी हुई वेणी के समान होते हैं। ऐसे चार प्रकार से उनका केश बंधन है श्री कृष्ण का। कभी कभी वृंदावन के हमारे श्री कृष्ण बलराम मंदिर में आपने देखा होगा, ये चारों तरह के वेश या केश बंधन कृष्ण बलराम जी स्वीकार करते हैं, खास करके जब चूड़ा या जटा जो बोलते योगी जन, जटा या चूड़ा है कभी पीछे की ओर, तो भगवान ऐसे अलग अलग समय पर तरह तरह के केश बंधन को स्वीकार करना पसंद करते हैं। आगे दूसरा है अंगराग, विविध रंगों के धातुओं से आदि वो अपने लेप लगाते हैं अपने शरीर के ऊपर, जैसे सफेद रंग, पीला रंग इत्यादि। तीसरा है माला, भगवान श्री कृष्ण के तीन प्रकार की मालाएं होती हैं। एक तो है वैजयंती माला, जिसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो वैजयंती माला ये पांच विभिन्न रंगों के फूलों से बनाई जाती है। तो कौन से हैं वो? एक है कमल, दूसरा है तुलसी का फूल जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, फिर मंदार, कुंद और पारिजात। ये पांच फूल हैं जिनसे भगवान श्री कृष्ण की वैजयंती माला बनती है और वो घुटनों तक पहुंचती है। दूसरी माला जो भगवान कृष्ण पहनते हैं वो है वनमाला। वनमाला में भगवान वनमाला जो है वो पत्तों से, पत्रों से, तरह तरह के वन के फूलों से बनाया जाता है। और तीसरी प्रकार की माला जो श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं वो है रत्नों की माला या मोतियों की माला। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने आप को तरह तरह के मालाओं से सुशोभित करते हैं। अब आई बात वनमाला की। जब वनमाला हो या वैजयंती माला हो, भगवान श्री कृष्ण इन मालाओं को भी तीन प्रकार से वो ग्रहण करते हैं, पहनते हैं। कभी कभी हमें देखा है लोग टोपी पहनते हैं ना, तो आजकल एक फैशन है कि टोपी उल्टा पहनना, आपने देखा होगा ना, जो सामने होना चाहिए वो पीछे करते हैं। ऐसे लोग फैशन के नाम पे करते हैं तरह तरह से कपड़ों को पहनना। तो श्री कृष्ण भी अपनी वनमाला को तरह तरह से पहनते हैं। पहला है वैक्षुक, जैसे एक ब्राह्मण अपने उपवीत को धारण करता है, यज्ञोपवीत को, जनेऊ को, बाएं कंधे से लेकर फिर नीचे दाहिने भुजाओं के नीचे कमर पर चलते हैं, वैसे भगवान कृष्ण वनमाला को या वैजयंती माला को धारण करते हैं। कभी कभी वो साधारण ढंग से अपने गले में ही पहन लेते हैं और कभी कभी आपीड़ अपने सर में भी बांध लेते हैं उस माला को। और इस श्लोक में, 12वें श्लोक में इसका वर्णन है आपीड़ का, श्रग अवतामस। तो इस समय जबकि गोपियां देख रही हैं तो श्री कृष्ण ने उस माला को अपने बालों में बांध दिया है, गले में नहीं पहना है उस समय। गले में दूसरी माला भी हुई होगी लेकिन यहाँ ये माला ऊपर की ओर है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने को सजाते हैं। तो ये रही बात माला की। फिर आगे चित्र, उनके शरीर पे तरह तरह के चित्र होते हैं। कभी कभी यहाँ भी हम जब सजाते हैं भगवान के अर्चा विग्रह को तो कभी कभी तिलक आदि से चित्र बनाते हैं भक्त, बिंदुओं से चित्र बनाते हैं। तो श्री कृष्ण के दिव्य शरीर पे भी ऐसे तरह तरह के सुंदर चित्र होते हैं। इसका भी विकृत प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, अंग्रेजी में उसे टैटू कहते हैं, अब हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। लोग अपने शरीर में, सारे शरीर में वो तरह तरह के चीज अंकित करते हैं, अब कैसे करते हैं पता नहीं, काफी दर्द होता है उसको करते समय, लेकिन वो करते हैं। तरह तरह के चित्र हैं, भक्त लोग भी कभी कभी कर लेते हैं विदेश में, कोई हरे कृष्ण महामंत्र हो, लेकिन ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। मुद्रा धारण जो है, जो दीक्षा का के पंचांग संस्कार में से एक है, वो उसमें केवल चंदन आदि से हमें मुद्रा धारण करना चाहिए। एक ताप कहते हैं, जबकि दीक्षा के समय एक लोहे से, गर्म लोहे से वो छाप लगाया जाता है शरीर के ऊपर। तो ऐसे तो प्रथा है लेकिन वो तो दीक्षा के समय की जाती है और विशेष करके श्री संप्रदाय आदि में ऐसे किया जाता है। हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में ताप इत्यादि इनके ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाता है। तो खैर, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के ऊपर ऐसे चित्र भी रहते हैं। और आगे पांचवा है तिलक। तिलक के रंग भी अलग अलग होते हैं, कभी सफेद, कभी पीले, कभी लाल, जैसे चित्रों के रंग भी ऐसे ही होते हैं। कस्तूरी से वो तिलक बनता है कभी भगवान का। फिर छठा और सातवा है तांबूल, तांबूल अर्थात पान। वो भगवान के लिए ठीक है लेकिन हमें नहीं ग्रहण करना है। अर्चा विग्रह की सेवा में भगवान को तांबूल अर्पण करने की प्रथा है और ये एक नियम है। भोजन के बाद कभी अर्पण किया जाता है भगवान को, परंतु वैष्णव कभी तांबूल को नहीं स्वीकार करते, भले वो महाप्रसाद भी क्यों ना हो। और तांबूल भगवान कहा खाते हैं, स्वीकार करते हैं, तो स्वादिष्ट तो होता है, फिर उनके मोतियों जैसे दांत जो होते हैं उनमें लाल लाल रंग आके और भी सुंदर लगने लगते हैं। लेकिन आदमी जब खाता है ना पान, तब कोई सौंदर्य नहीं लगता। हम तो बड़े दूर ही रहते हैं पान खाने वालों से। पहली बात तो ये है कि आप उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि उनका मुंह भरा हुआ होता है, और बात नहीं करें ये तो मुसीबत कम है, बात करेंगे तो मुसीबत ज्यादा है, फिर उनके सामने खड़े नहीं हो सकते, दूर ही रहना पड़ता है। और भारत में तो हर जगह, खास करके सरकारी दफ्तरों में, अस्पतालों में, सब जगह देखें लाल लाल धब्बे सब पड़े होते हैं, अपने लक्षणों को छोड़ के जाते हैं कि मैंने यहाँ पान चबाया था। तो भगवान श्री कृष्ण से तांबूल को स्वीकार करते हैं, साथ साथ लीला कमल, लीला कमल को अपने हाथ में ऐसे घुमाते हैं, कभी कभी कानों में रख लेते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने आप को सजाते हैं, साथ साथ में आभूषण भी तरह तरह के श्री कृष्ण पहनते हैं, जैसे कि कभी मुकुट पहन लेते हैं, कभी कभी हार पहन लेते हैं, कभी कड़े पहन लेते हैं, कभी बाजू बंद पहन लेते हैं, और कुंडल तो है ही, मकर कुंडल। यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभग सविलास हासम। यस्य आननम, जिनका मुखारविंद बहुत सुंदर है और जिस मुखारविंद पर हल्की सी मुस्कान है, सविलास हासम, दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं श्री कृष्ण सुभगा। साथ 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 मकर कुंडल चारु कर्ण, उनका उनका कपोल, उनके कान बहुत सुंदर लगते हैं, चेहरा बहुत सुंदर लगता है चारु, क्योंकि वो मकर कुंडलों से सुशोभित होते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण मकर कुंडल भी स्वीकार करते हैं। तो तरह तरह के आभूषण आदि भगवान कृष्ण पसंद करते हैं। ये बताया जाता है कृष्ण के आभूषणों के बारे में कि ये आभूषण बल्कि और भी सुंदर लगने लगते हैं। कृष्ण को किसी आभूषण की वास्तव में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो है ही सौंदर्य की परिपूर्णता, लावण्य सारम, जैसे कल चर्चा कर रहे थे, लावण्य या सौंदर्य के सार हैं वो। परंतु फिर भी अपने मनोरंजन के लिए और इन आभूषणों को सेवा देने के लिए वो इनको स्वीकार करते हैं। तो शास्त्र में बताया जाता है कि भगवान विष्णु या श्री कृष्ण अलंकार को स्वीकार करते हैं, वो पसंद करते हैं। अलंकार प्रिय विष्णु, जलाधार प्रिय शिव, नमस्कार प्रिय भानु, गणेश मोदक प्रिय। तो अलंकार प्रिय विष्णु, तो भगवान विष्णु या कृष्ण अलंकार पहनना पसंद करते हैं। जलाधार प्रिय शिव, तो शिवलिंग की उपासना कैसे, जलाधार से ऊपर से जल आदि, जल दूध आदि की धारा लगाते हैं, उससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। नमस्कार प्रिय भानु, भानु अर्थात सूर्यदेव, तो सूर्यदेव को नमस्कार करने से वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई लोग प्रातःकाल उठ के सबसे पहले सूर्य के सामने जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं। वास्तव में वैष्णव जब सूर्य की उपासना करते हैं, हमें भी करना चाहिए, वास्तव जब भी हम सूर्य देव को पहली बार देखते हैं नमस्कार कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव के भीतर विराजमान हैं सूर्य नारायण भगवान। भगवान विष्णु स्थित हैं सूर्य के भीतर। तो जो ब्रह्म गायत्री मंत्र आदि है वो सूर्य देव में स्थित या सूर्य मंडल में स्थित सूर्य नारायण भगवान को संबोधित करता है। तो नमस्कार प्रिय भानुः और गणेश मोदक प्रिय, तो गणेश जी मोदक पसंद करते हैं, तो ऐसे अलग अलग देवी देवताओं की पसंद है और भगवान की पसंद भी है, तो ऐसे एक कहावत है। तो खैर इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन है और युगल गीत का संबंध जैसे पहले भी कह चुके हैं वो वेणु गीत, गोपी गीत और प्रणय गीत, इन तीन गीतों से भी है। तो आचार्यों ने बताया है कि 12वां श्लोक का संबंध है उस प्रसिद्ध श्लोक से जो वेणु गीत अर्थात 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है। वो कौन सा है? बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्रीमद् भागवत के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से या सबसे सुंदर श्लोकों में से एक माना जाता है, बल्कि सबसे प्रसिद्ध श्लोक माना जाता है। बरहा पीडम अपीड बरह, बरहिणी या बरहिणी ये मोर है, तो बरह अपीडम मतलब मोर पंख उन्होंने बालों में स्वीकार किया हुआ है। नटवर वो एक नट के समान है और नटों में से सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए नटवर वपु हो उनका दिव्य शरीर है। कर्णयो हो कर्णिकारम तो द्विवचन है, कर्णयो हो इसका मतलब है दोनों कानों में वो कर्णिकार फूल स्वीकार करते हैं, या तो वो कभी एक कान में कभी दूसरे कान में ऐसे भी कर्णिकार फूल स्वीकार करते हैं। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास है कनक कपिशम और वो कपड़े जो वस्त्र धारण करते हैं कनक कपिशम सोने के रंग के हैं, इसलिए उनका नाम है पीतांबर उनके वस्त्रों का, उनकी धोती का। तो ऐसे पीत रंग के या स्वर्ण रंग के वस्त्र वो पहनते हैं। वैजयंतीं च मालाम और साथ साथ वैजयंती की माला भी पहनते हैं। रंध्राण वेणोर अधर सुधया पूरयन और वो अपनी बांसुरी को बजाते हैं। कैसे बजाते हैं? अपने अधरों के अमृत को बांसुरी के छेदों में भर देते हैं, पूरयन भर देते हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि वो बांसुरी को बजाते हैं और साथ साथ गोप वृंदै ही वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। उनके साथ में जो गोप वृंद हैं उनके ग्वाल बाल मित्र हैं वो उनको घेरे घेर लेते हैं। श्री कृष्ण उनके साथ में वन में प्रवेश करते हैं और श्री कृष्ण के साथ चलते चलते ये गोप वृंद उनके गीत का उनके गुणों का गान करते हैं, गीत कीर्ति ही। और ऐसे श्री कृष्ण के गमन से वृंदारण्यम स्वपद रमणम वृंदावन की भूमि धन्य हो जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श उस भूमि से हुआ है। तो ऐसे वेणु गीत में गोपियां बता रही हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन है। गोपाल सहस्र नाम में भी ये प्रसिद्ध श्लोक आता है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। कस्तूरी तिलकम, कस्तूरी का तिलक पहनते हैं। ललाट पटले अर्थात अपने ललाट पे वह कस्तूरी का तिलक धारण करते हैं। वक्षस्थले कौस्तुभम, वक्षस्थल में उन्होंने ये कौस्तुभ मणि धारण कर ली है। नासाग्रे वरमौक्तिकम, अपने नाक के अग्र भाग में उन्होंने एक बहुत ही श्रेष्ठ मोती स्वीकार की है आभूषण के रूप में। करतले वेणु कंकणम, करतले वेणु, वेणु भी हाथ में है साथ साथ करतलों में कंकण भी है। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावली, उनके सारे उनका सारा दिव्य शरीर जो है बहुत सुंदर है। हरिचंदनम, चंदन का लेप लगाया हुआ है। कंठे च मुक्तावली, कंठ में मोतियों की माला है। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, गोपस्त्री परिवेष्टितो, गोपियों से घिरे हुए हैं। परम विजयते, हमेशा जय विजय हो उस गोपाल के, गोपाल का जो वास्तव में समस्त गोपालों के चूड़ामणि है। गोपाल मतलब जो गायों का पालन करता है, तो अनेक गोपाल हैं, तो गोपालों के जो चूड़ामणि है वो श्री कृष्ण है, उनका जय हो, जो कि सदैव गोपियों से घिरे के साथ में रहते हैं, गोपियों गोपियों के संग में रहते हैं। अच्छा पर्दा है अभी, नहीं तो आप देख सकते हैं, यहाँ भी चित्र है ना सुंदर, या यहाँ इस चित्र को देख सकते हैं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, तो यह है श्री कृष्ण का सुंदर वर्णन। अब 13वें श्लोक में गोपियां कहती हैं, बादल का वर्णन करती हैं, और बादल के मन में क्या विचार आता है। हाँ, वृंदावन में सबका चित्त है, सबका मन है, सब सोचते हैं। यह भौतिक सृष्टि में पत्थर नहीं सोचते हैं, बादल नहीं सोचते, लेकिन वृंदावन में हर चीज चेतन है। बादलों की भी इच्छा होती है, वो भी सोचते हैं। तो गोपियां कहती हैं, महत अतिक्रमण संकीत चेता, महत अतिक्रमण, या किसी कोई अपराध हो जाए, सबसे महान व्यक्ति का, किनका, श्री कृष्ण का, जो कि सबसे महान व्यक्ति है। महत अतिक्रमण संकित चेता, एक भय हो जाता है बादलों के हृदय में कि कहीं हम श्री कृष्ण के प्रति जो सबसे महान व्यक्ति हैं अपराध तो नहीं होगा ना, और इसलिए वो मंद मंदम अनुगर्जति मेघ। तो ये मेघ जो है मंद मंदम, अर्थात बहुत नाजुक कोमल ढंग से वो गरजने लगते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तो वेणु बजा रहे होते हैं, वेणु रवेण, वेणु बजाते बजाते वो सबको प्रसन्न करते हैं। तो बादलों की भी इच्छा होती है कि भगवान श्री कृष्ण के वेणु वदन में मैं भी ताल से ताल में मैं भी गरजना शुरू कर दूं। तो हल्के ढंग से, बहुत कमजोर, बहुत ही नाजुक तरह से, कोमल ढंग से बादल गरजने लगते हैं। बरसात के समय हम जब बादलों के गरजने को सुनते हैं तो ये कोमल शब्द नहीं आता मन में, भय आता है। एक शेर या सिंह के गरजने की याद आती है, घबराहट सी होती है हृदय में जब बहुत जोर से बादल गरजने लगते हैं। तो लेकिन अब घबरा रहे हैं बादल, बहुत जोर से गरजने की इच्छा नहीं, अपराध कहीं हो जाए श्री कृष्ण के प्रति, तो बहुत ही हल्के से मधुर ढंग से गरजने लगते हैं। मंद मंदम अनुगर्जति मेघ, और ताल में ताल, सुर में सुर मिला रहे हैं श्री कृष्ण की बांसुरी वदन का। सुहृदम अभ्यवर्षत सुमनोभि, और फूलों की वृष्टि करना चाहते हैं वो बादल। अब बादल भले फूलों की वृष्टि कैसे कर सकते हैं, बादलों में तो फूल नहीं होते हैं ना। तो गोपियां कहना चाहती हैं कि ये जो पानी के बूंद हैं वो फूलों के समान हैं, वो बादलों के फूल हैं, और ऐसे फूल वो अर्पण करना चाहते हैं। जैसे अभिषेक के समय श्री कृष्ण के सुंदर मूर्ति के ऊपर अर्चा विग्रह के ऊपर हम फूलों की वर्षा करते हैं, पत्तों की, पंखुड़ियों की वर्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण ऐसे बहुत ही गर्म दिन के गर्म दिन में जब सूर्य किरणें तेज हैं, कड़ी होती हैं, तो उनको ठंडक पहुंचाने के लिए ऐसे पानी के बूंद रूपी वृक्षों की वर्षा करते हैं। और फिर छायया च विदधत प्रतपत्रम, तो ये बादल छाते के समान बन जाते हैं और ऐसे बन के सूर्य के कड़े धूप से श्री कृष्ण और उनके साथियों को छाया देते हैं और वो श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, क्योंकि वो साथ साथ में भी गीत भी गा रहे हैं, उनको छाया भी दे रहे हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं कि ये श्री कृष्ण की भावना है। तो इस श्लोक का, इस 13वें श्लोक का संबंध वेणु गीत के 16वें श्लोक में है, जहां यहां पर भी गोपियां इसी प्रकार का वर्णन करती हैं। दृष्ट्वा तपे व्रज पशून सह राम गोपै संचारयन्त मनु वेणु मुदीरयन्तम् प्रेम प्रवृद्ध उदित कुसुमावलिभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुद आतपत्रम्। दृष्ट्वा तपे, दृष्ट्वा आतपे, जब बादल देखते हैं आतपे, आतप मतलब बहुत गर्मी, सूरज की कड़ी धूप है, व्रज पशुन सह राम गोपये ही, और श्री कृष्ण व्रज के पशुन अर्थात पशुओं को, गायों को ले जा रहे हैं, सह राम गोपये ही, बलराम के साथ और गोपगणों के साथ, ग्वाल बाल मित्रों के साथ वो कड़ी धूप में जा रहे हैं। संचारयंतम अर्थात गायों को एक साथ इकट्ठे ले जा रहे हैं। गाय इधर उधर जाती है ना, आपने देखा होगा गाय जब चरते हैं तो कभी एक दिशा में नहीं जाते, कभी इधर गए फिर से इधर आ गए, ऐसे इधर उधर चले जाते हैं। तो इनको एकत्र करते हुए श्री कृष्ण, बलराम जी और गोपगण आगे बढ़ते जा रहे हैं। अनुवेणुम उदीरयंतम, और बार बार श्री कृष्ण उदीरयंतम बड़े जोर से, मीठे ढंग से लेकिन जोर से अपने बांसुरी को बजाते हैं। प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावली भी, तो बड़े प्रेम से, प्रेमावेश में आकर ये बादल जो हैं अपने आप को विस्तार कर लेते हैं। और कुसुमावली भी, उसी प्रकार से पानी के बूंद रूपी कुसुम या फूल जो हैं वो बरसाने लगते हैं। सख्युर व्यधात स्ववपुषाम्बुद आतपत्रम, अम्बुद मतलब बादल, अम्बु जल है, द मतलब जो प्रदान करते हैं। तो संस्कृत भाषा कितनी सुंदर है कि एक ही चीज को आप तरह तरह से आप प्रकट करा सकते हैं, उसको कह सकते हैं। और संस्कृत भाषा ऐसी है कि कोई कह नहीं सकता कि शब्द, हम सारे शब्द जानते हैं, नए नए शब्द आप ही बना सकते हैं संस्कृत में। यदि व्याकरण के नियमों का पालन आपने किया तो तरह तरह के धातुओं को मिला जुला कर आप अनेक शब्द कह सकते हैं संस्कृत में। जैसे बादल के लिए कितने शब्द हैं, अम्बुद जो जल प्रदान करते हैं, अम्बु जल है। अभी जल के लिए संस्कृत में कम से कम 70 शब्द हैं, पृथ्वी के लिए भी कम से कम 40-50 शब्द हैं, सूर्य के लिए, कमल के लिए, फूल के लिए, आंख के लिए कितने शब्द हैं। अब अंग्रेजी में आंख कहना है तो क्या एक शब्द दो शब्द, क्या आए बस। लेकिन संस्कृत में कोई बता सकते हैं आंख, आंख शब्द के लिए संस्कृत में कौन से शब्द हैं? नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्ष, नयन। वाह देखिए कितने सारे शब्द आ गए। और कमल के लिए Padma.
Jalaja.
जो जल में जन्म लेता है, अब्ज अरविंद पंकज सरोज उत्पल, ऐसे कितने सारे सुंदर सुंदर शब्द होते हैं पृथ्वी के लिए, धरणी वसुधा मही, कितने सारे ऐसे सुंदर शब्द हैं सूरज के लिए, रवि भास्कर अर्क भानु अरुण। देखिए आप सब संस्कृत पंडित हैं, बस केवल श्रीमद् भागवत और भगवत गीता पढ़ने से ही ये हम सब सीख जाएंगे। ये भाषा नहीं, ये संस्कृतम जो परिपूर्ण है वो है संस्कृतम, जो पूरी तरह संपूर्ण तरह से किया हुआ है वो है संस्कृतम। हर दृष्टि से परिपूर्ण है ये भाषा, जैसे इसकी लिपि है, जैसे अक्षर लिखे जाते हैं वैसे ही उच्चारण होता है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसे नहीं होता। प्रभुपाद जी कहा करते थे बी यू टी का बट होता है लेकिन पी यू टी का पट नहीं होता, पुट होता है। तो ये भाषा इतने अच्छे ढंग से बनाई नहीं गई है, लेकिन संस्कृत में जैसे अक्षर जुड़े जाते हैं, जैसे लिखते हैं वैसे ही उच्चारण करते हैं। देवलोक की भाषा है, लेकिन एक देवलोक की ही नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं गोलोक वृंदावन में वैकुंठ जगत में भी संस्कृतम ये भाष्य है, ये भाषा है। उस भाषा का नाम नहीं है इसलिए संस्कृतम कहा गया है, जो परिपूर्ण है हर तरह से परिपूर्ण है संस्कृतम। यह भाषाओं के नाम रखे गए लेकिन संस्कृत ये नाम हमने दिया है। ये तो वैसे देवलोक में वैकुंठ जगत में भी ये भाषा है और उच्चारण में कोई फेरबदल नहीं होगा, चाहे कोई यहां का व्यक्ति हो तो कहीं दूसरी जगह का हो। अभी जलज कहना तो जलज कहना है, आतप आतप तो कोई और उच्चारण का सवाल नहीं। लेकिन अंग्रेजी में दक्षिण भारत का व्यक्ति एक तरह से अंग्रेजी बोलेगा, उत्तर भारत का व्यक्ति दूसरे तरह से बोलेगा, चीन का आदमी और तीसरे तरह से अंग्रेजी बोलेगा, इंग्लैंड के आदमी की अंग्रेजी तो और है, अमेरिका वाले जो अंग्रेजी बोलते हैं वो और कुछ अलग ही है। तो कोई भी भाषा लीजिए, अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग देशों के लोग अलग अलग तरह से उच्चारण करते हैं, लेकिन संस्कृतम ऐसे नहीं है। जो सीखता है इस भाषा को वो उसी तरह से उच्चारण करेगा जैसे उचित है। इसलिए प्रभुपाद जी जोर दिया करते थे कि हमें इन श्लोकों का उच्चारण सही कर लेना चाहिए। केवल उच्चारण के ऊपर ध्यान देने मात्र से हम काफी कुछ सीख सकते हैं और ये भाषा ऐसी है, बहुत रसमय, रस से भरी हुई है। इसलिए तो कवि जो हैं इस भाषा में कविता लिखना बहुत पसंद करते हैं। ऐसी ऐसी कविता लिखी जा सकती है जो अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में नहीं लिखी जा सकती। तो प्रभुपाद जब विदेश में गए थे तो कभी कभी बहुत हैरान होते थे, क्योंकि विदेश के भक्त उनको कभी कोई भारतीय भाषा से उनका कोई संबंध कभी था नहीं, तो उच्चारण करना ठीक से नहीं जानते थे। तो प्रभुपाद जी बार बार रोकते थे। एक क्लास में, शायद वो जापान में क्लास दे रहे थे, आधे से ज्यादा जो है उस प्रवचन में, उस कथा में, भागवत क्लास में, उन्होंने हर एक भक्त से श्लोक का उच्चारण करवाया 5-10 बार। तो पूरा प्रवचन ही ऐसा हो गया, क्योंकि वो चाहते थे कि आपको सीखना चाहिए उच्चारण कैसे करना है। मैंने इतने कठिनाई से यहाँ शब्दार्थ दिए हैं, अनुवाद किया है, तात्पर्य दिया है, ताकि आप समझो कि उच्चारण कैसे किया जाए। विदेश के लोग जैसे अ को आ कह देते हैं देवाकी, लेकिन है देवकी, रेवाती रमान कहते हैं, तो रेवती रमण है, जो भारतीय भाषा जानते हैं उनके लिए सुलभ है, इसलिए भारतीय लोगों को संस्कृत शब्दों का गलत उच्चारण करना ये क्षमा नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय भक्त कभी कभी ठीक से उच्चारण नहीं करते हैं, तो केवल इन ग्रंथों को पढ़ के और सुन के हम अच्छी तरह से सीख पाएंगे, और फिर थोड़ा कुछ बोलना भी सीख लिया तो बस कोई बात ही नहीं, फिर कितना अच्छा हो जाएगा। एक गांव है कर्नाटक में, सारे गांव के निवासी संस्कृत में बात करते हैं, छोटे बच्चे भी हैं संस्कृत में बोलते, उनको बचपन से ही संस्कृत सिखाया जाता है, घर में भी संस्कृत में ही बात करते हैं। तो यदि हम थोड़ा बहुत संस्कृत सीख भी लें तो अच्छी बात है, भागवत आदि को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उसका रस और बढ़ जाएगा। लेकिन अंततः भगवान किस चीज को स्वीकार करते हैं? भाषा ग्राही जनार्दन वो नहीं है, नहीं? भाव ग्राही जनार्दन है। लेकिन जहां भाव है वहां पे भाषा को भी सीखने का हम प्रयास करेंगे। जहां भक्ति है, जहां प्रेम है, वहां छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे हम भगवान की प्रेम में ही सेवा करते हैं, तो सेवा करते करते जैसे अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं कोई, तो हम ये नहीं कहते हैं कि जैसे वैसे बस कर दिया, भगवान को भोग चढ़ा दिया, चलो थाली बस रख दी, नहीं, बड़े ध्यान से आराम से रखते हैं, कटोरियां अच्छी तरह से सजाते हैं, जो भोग रखा जाता है भगवान के थाली में बड़े अच्छे ढंग से लगाते हैं, सब्जी की कटोरी में सब्जी, ऐसा नहीं कि थोड़ी सब्जी थाली में गिर गई, दाल में भी गिर गई, ऐसा नहीं, बड़े ढंग से अच्छे ढंग से फल भी रखते हैं तो अच्छी तरह से काट के रखते हैं, पकाते हैं तो याद रखते हैं कि भगवान के लिए हम भोग बना रहे हैं, तो बड़े ध्यान से हम सब्जी पकाते हैं या चावल आदि बनाते हैं। उसी प्रकार से हम जो भी सेवा करते हैं बड़े हृदय से करते हैं, क्यों? क्योंकि ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो जहां प्रेम है, जहां भक्ति भाव है, वहां अवश्य हम ध्यान पूर्वक कार्य करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं बड़े ध्यान से करते हैं, क्योंकि प्रेम है हृदय में। तो जैसे अर्चा विग्रह की सेवा एक सेवा है, जप की सेवा भी सेवा है, कीर्तन भी एक सेवा है, मंदिर मार्जन भी सेवा है, ठीक उसी प्रकार से ग्रंथों का अध्ययन करना, इन श्लोकों का उच्चारण करना, ये भी एक सेवा है। तो इसको क्यों नहीं हमें ध्यान से करना चाहिए? हमें क्यों सोचना चाहिए कि हम संस्कृत पंडित नहीं हैं तो हम उच्चारण नहीं कर सकते? नहीं, हर एक व्यक्ति उच्चारण कर सकता है, थोड़े अभ्यास की बात है, और बस हमें ध्यान से श्रवण करना चाहिए, बस इतना हो तो हमारी भक्ति और भी कितनी रसमय हो जाएगी। तो खैर, ऐसे गोपियां भी आपस में संस्कृत में ही बात कर रही थी, और कभी कभी ब्रजभाषा में भी। ब्रजभाषा भी बहुत सुंदर है, लेकिन आजकल जो ब्रजभाषा है वो थोड़ी बदल गई है पहले के हिसाब से। है गो जय गो ऐसे सब बोलते हैं वृंदावन में, कि है गो, तो भाषा थोड़ी अलग है वहां की अभी। तो खैर, गोपियां बात कर रही हैं, शुकदेव गोस्वामी जैसे है वैसे गोपियों की बातों को दोहरा रहे हैं। तो ठीक है, आगे की श्लोक चर्चा करेंगे तो समय नहीं है, तो कल चर्चा करेंगे शाम को। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न ने ऐसे ही कहे कि कभी कभी हम कृष्ण भावनामृत को बहुत सहज लेते हैं, यद्यपि वो बहुत ही दुर्लभ है, तो नहीं लेना चाहिए, बस यही है ना। जब हाथ में हमारा कोई अनमोल रत्न होता है तो हम कितने सावधानी से रखते हैं, जब हमारे पास कोई 500 रुपए का नोट दे देता है तो हम सावधानी से नहीं रखेंगे। हम जानते हैं कि 500 रुपए का नोट मूल्यवान है, ऐसे किसी बच्चे के हाथ में नहीं देंगे, बच्चा नहीं जानता, वो फाड़ भी देगा नोट को, क्योंकि वो नहीं जानता कि ये है क्या चीज, लेकिन हम जानते हैं तो हम बड़े ध्यान से रखते हैं। तो यदि हमने ध्यान से श्रवण किया है, ध्यान से अध्ययन किया है, ध्यान से भक्ति के नियमों का अभ्यास किया है, तो अवश्य इसके मूल्य को हम जानेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे और इसको सस्ता कभी नहीं लेंगे। प्रश्न ये है दूसरा कि गोलोक धाम तो स्वयं प्रकाशित है, तो सूर्य के धूप कैसे आते हैं? वहां भी तो अब ये लीला जो चल रही है ये भौम वृंदावन में हो रही है। दो प्रकार के वृंदावन है ना, एक को पर व्योम वृंदावन कहते हैं जो उनके आध्यात्मिक जगत में है, और वही पर व्योम वृंदावन इस भौतिक सृष्टि में भगवान की कृपा से प्रकट हो जाता है, उसे भौम वृंदावन कहते हैं, जो वृंदावन भूमि पर प्रकट हो चुका है। तो क्योंकि ये भूमि पर प्रकट हो चुका है इसलिए कभी कभी भूमि की तरह ही दिखता है, तो सूरज भी आता है ऊपर से। लेकिन खूबी तो ये है कि वृंदावन में जितने भी ऋतुएं हैं वो केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला के लिए सहायक होती हैं। आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर कहते हैं कि कभी कभी एक ही साथ छह ही ऋतुएं आती हैं वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला को और मनोरम बनाने के लिए। तो जब दोपहर के समय गर्मियों के मौसम में धूप थोड़ी बढ़ जाती है तो बादल को भी सेवा का मौका चाहिए, तो बादल आके भगवान की सेवा करता है। लंबा प्रश्न है, संक्षिप्त में पूछिए प्रश्न। हाँ हरे कृष्ण। उद्धव गीता और भगवत गीता में अंतर क्या है? भगवत गीता वो संवाद है जो कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ, ठीक है, और उद्धव गीता वो संवाद है जो कि श्री कृष्ण और उनके परम भक्त उद्धव के बीच में हुआ, जबकि श्री कृष्ण का अंतर्धान या तिरुभाव होने ही वाला था और उद्धव को पता चल गया था। उद्धव श्री कृष्ण के संग को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि आप जाओ बद्रिकाश्रम, वहां मेरी सेवा करते रहना, और जब प्राण त्यागोगे तो निश्चित मेरे पास आओगे। लेकिन उद्धव संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा कि और कुछ बताइए हमें ताकि इन आदेश उपदेशों को मैं अपने हृदय में स्वीकार करके बद्रिकाश्रम में रह सकता हूँ। तो फिर श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में छठे अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में ये संवाद होता है, जिसमें बड़े विस्तार में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक विषयों के ऊपर चर्चा की और उद्धव को समझाया, ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ माता जी। माइक में बोलिए माता जी।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
सांप को अधम योनि बताया गया है, लेकिन यहाँ पर सांप को शिव जी भी ग्रहण करते हैं गले में, और स्वयं भगवान भी शेष नाग के ऊपर शयन करते हैं, तो ऐसा क्यों है?
इस जगत में सांप नीच योनि मानी जाती है, लेकिन नागराज कौन है? नागराज कौन है? संकर्षण है, अनंत शेष है, नागों के राजा। जो भगवान से जब कोई चीज संबंधित होती है तो वो शुद्ध हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। तो शिव जी अपने गले में सांपों को क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि वो भी, उनके आराध्य देव भी संकर्षण है, और संकर्षण भी विस्तार करते हैं अपने आप को अनंत शेष के रूप में और भगवान की शैया बन जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी शेषनाग पर ही शयन करते हैं, क्षीर सागर में या कारण सागर में। तो वो सर्प सांप तो दिव्य है, लेकिन यहाँ पे यहाँ के सांप दिव्य नहीं है। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, माइक पीछे है।
हरे कृष्ण। जो भगवान सात प्रकार से जो सजा देते हैं, तो सातवां होता है।
सातवां है लीला कमल, हाथ में लीला कमल रखते हैं, जैसे सिनेमा के बिना कुछ रखते हैं ना, वो इधर कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे रखते हैं, सब कॉपी करते हैं भगवान का। ये बताया गया है कि शिवजी भी जब विष का पान करते हैं, हलाहल विष जब समुद्र मंथन के समय निकलता है, तो वो अपने कंठ में उस विष को धारण करके रख लेते हैं, तो उससे उनको जलन होती है। इसलिए सांपों को रखते हैं, क्योंकि सांप का शरीर बहुत ठंडा होता है, उसे ठंडक पहुंचती है और गले के अंदर जो गर्मी है उसको वो कम हो जाती है। ये भी है, ऐसे भी बताया जाता है। हाँ, माइक दीजिए इधर।
हाँ जी, आप जो कह रहे हैं कि जो नदी की लहरें स्तब्ध हुई थी, और वो जो नदी का जल है भगवान के चरण स्पर्श करें, तो बिना लहर से कैसे स्पर्श?
नहीं, वो खड़े रह गया, ऐसे मानो कि श्री कृष्ण आए तो उनके चरण कमलों का स्पर्श करें। इसलिए गोपियां कहती हैं, ये इस नदी ने भी कोई पुण्य नहीं किया है हमारे जैसे, इसलिए वो चरण कमलों का स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। हम भी खड़े खड़े दूर से ही देख रहे हैं, सोच रहे हैं, हम भी स्पर्श नहीं कर पाते, ये नदी भी स्पर्श नहीं कर पा रही है। हम दोनों ने पुण्य नहीं किए हैं, जिसके कारण हम श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से दूर ही रहते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? अंतिम प्रश्न। ठीक है, तो फिर कोई सूचनाएं हैं?